Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये सब कुर्सी में बैठे हुए वही दिवाली के खड़े हैं भाई, या स्टेज में बैठा हुआ भी वही खड़ा है। ये नहीं समझ लेना कि कुर्सी में बैठे हुए ये सब घड़े हैं, ये स्टेज में बैठा हुआ भी वही घड़ा ही है। ये घड़ा ही बकबक कर रहा है, बोल रहा है। घड़ा बोलता है वो। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी दिग्विजय के लिए ये निकले थे और भ्रमण करने के क्रम में वह पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारा पृथ्वी माने भारत भूमि को वह पैदल यात्रा करते हुए अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। निकले और सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ पर आसीन हो गए। सर्वज्ञ और जगतगुरु आचार्य के पद पर विभूषित हो गए। वहां से घूमते हुए बद्री केदार की यात्रा किया। बद्रीनाथ में पहुंचकर बद्रीनाथ मंदिर का उद्धार किया। कि अभी जो बद्रीनाथ मंदिर है वह शंकराचार्य जी का ही देन है। आज से 1250 वर्ष पहले नास्तिकों ने उस मंदिर को तोड़कर बद्री विशाल भगवान के मूर्ति को अलकनंदा में फेंक दिया था। वहां कोई मंदिर का नाम निशान ही नहीं था। भगवान शंकराचार्य जी को भगवान नारायण ने कहा कि मेरी अवस्था यह है, तुम वेद उद्धारक हो, तुम वेद उद्धारक हो, तो वेद सम्मत मेरा विग्रह यहां नदी में पड़ा हुआ है और मेरा भी उद्धार करो। भगवान बद्री विशाल नारायण ने शंकराचार्य जी को कहा और शंकराचार्य जी पहुंच गए ठेठ हिमालय और वहां जाकर खोजी किया, ध्यान लगाया तो अलकनंदा में भगवान नारायण की मूर्ति पड़ी हुई है। भगवान शंकराचार्य जी ने उस मूर्ति को निकाला, मूर्ति का उद्धार किया। नारायण का तो क्या उद्धार करना था, मूर्ति का ही उद्धार करना था और इसी के माध्यम से वैदिक धर्म का उद्धार करना है। और पुनः मंदिर बनाकर उन्होंने उनके प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उनके सारी पूजा आजा की व्यवस्था मिलाई। दक्षिण भारत से ही ब्राह्मण को बुलाया और उनकी पूजा का नियम बना दिया। बद्री विशाल आज भी वही परंपरा अनुसार दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ही महाबद्री विशाल के आजा मुख्य पूजा करते हैं, मुख्य भट्ट के रूप में पूजा करते हैं। वो परंपरा आज भी है। उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी बद्रीनाथ से केदारनाथ होते हुए आगे नेपाल पहुंच गए। नेपाल पूरे शाक्तों का और कापालिकों का देश था और शाक्त कापालिक इतने जबरदस्त होते थे कि तंत्र मंत्र पर ही विश्वास करते थे और बड़े जबरदस्त तांत्रिक थे और शाक्त विशेष करके तांत्रिक ही होते हैं। शाक्त में दो भेद हैं, एक वाम मार्ग और दूसरा समयाचार, वामाचार समयाचार दक्षिण मार्ग। और जो सात्विक हैं वो दक्षिण मार्ग समयाचार और जो वाम हैं वो तामसिक हैं। तो वह लोग अब तंत्र सिद्धि करने के लिए भैरव और काली चामुंडा इत्यादि की उपासना करते हैं, तामसिक उपासना करते हैं, पंचमकार का आश्रय लेते हैं और अपनी उपासना सिद्धि करने के लिए नरबलि का प्रयोग करते हैं, तामसिक हैं वो। तो ऐसे ही जब शंकराचार्य जी नेपाल पहुंचे तो वहां पर भी पशुपति भगवान का नास्तिकों ने मंदिर तोड़ दिया और मूर्ति को फेंक दिया सरोवर में। भगवान पशुपति ने कहा कि मेरी ये अवस्था है, तुम वेद उद्धारक हो तो मेरा भी उद्धार करो, क्योंकि वेद का तब उद्धार माना जाएगा तो वेद सम्मत मूर्ति यज्ञ यागादि की प्रतिष्ठा हो। मंदिर वैदिक प्रक्रिया है, मूर्ति पूजा ये सनातन धर्म वैदिक है, भगवत विग्रह की आराधना ये वैदिक है। वेद उद्धार का तो यही प्रयोजन है कि वेद सम्मत समस्त प्रतीक और क्रियाएं वैदिक सम्मत ही होवे, यही वेद उद्धार का प्रयोजन है। तुम वेद उद्धारक हो, वेद सिद्धांत का प्रचारक हो, तो मेरी ये अवस्था है तो तुम मेरा भी उद्धार करो। तो भगवान शंकराचार्य ने पशुपति भगवान के विग्रह को भी खोजा और निकाला और वहां पुनः प्रतिष्ठा की। तो उस समय वहां के तांत्रिकों ने भगवान शंकराचार्य जी को चुनौती दिया शास्त्रार्थ करने के लिए, उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है शास्त्रार्थ किया जाए और जो हारेगा वह उसके सिद्धांत को स्वीकार करेगा। शास्त्रार्थ में तो यही है, जो हारेगा वह उसके सिद्धांत को स्वीकार करेगा। शंकराचार्य जी यदि हार जाएंगे तो कापालिक और तांत्रिकों का सिद्धांत स्वीकार करेंगे, कपालिक तांत्रिक यदि हारेंगे तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए और उसने ये व्यवस्था मिलाई कि बीच में पर्दा रहेगा, हम दोनों के बीच में पर्दा रहेगा और पर्दे के एक तरफ तुम बैठना और पर्दे के दूसरी तरफ मैं बैठूंगा, और जब हम प्रश्न करेंगे तो तुम उत्तर देना, तुम प्रश्न करोगे हम उत्तर देंगे, यही शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है। जो उत्तर दे नहीं पाएगा यह माना जाएगा कि वह हार गया। शंकराचार्य जी स्वीकार कर गए, पर्दा लगाया गया, पर्दे के एक तरफ शंकराचार्य जी बैठे, पर्दे के दूसरे तरफ तांत्रिक बैठ गया। अब शास्त्रार्थ शुरू हो गया तो तांत्रिक ने क्या किया कि एक मिट्टी के घड़े को वहां रखा और अपने तंत्र शक्ति के द्वारा किसी प्रेतात्मा को उस घड़े के अंदर आवाहन करके रख दिया। घड़े के अंदर किसको? प्रेतात्मा, प्रेतात्मा को उस घड़े के अंदर आवाहन करके रख दी। और तांत्रिक तो चला गया, अपने मस्ती से खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, और शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ तो वही प्रेतात्मा कर रहा है। ले जी, शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, वो उत्तर दे रहा है, वो प्रश्न करता है, शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, कई दिन तक चल रहा है। तो बड़ा आश्चर्य लगा शंकराचार्य जी को, ये क्या बात है, वो खाना खाने भी नहीं जाता है, नहाने धोने को भी नहीं जा रहा है, लघु शंका भी नहीं कर रहा है, क्या बात है ये। कुतूहलता शंकराचार्य जी के मन में हुई तो शंकराचार्य जी ने पर्दा उठाकर देखा तो वहां कोई तांत्रिक नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, एक मिट्टी का घड़ा रखा है और वो मिट्टी का घड़ा जवाब दिया जा रहा है, भाई उत्तर दिया जा रहा है। और क्योंकि जब पर्दा उठा के देखा तो वह घड़े से प्रेतात्मा भाग गया। देखो असली सन्यासी के सामने प्रेतात्मा उपस्थित नहीं हो सकता है, प्रेतात्मा का प्रभाव, भूतों का प्रभाव असली सन्यासी के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, वो छाया, वो छाया वहां उपस्थित हो ही नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी ने जैसे देखा तो घड़े में से प्रेतात्मा भाग गया। तो शंकराचार्य जी फिर उस कापाली को खोजने लगे, कहां गया तू? तो फिर बाद में आया तो क्या हुआ, तो क्या चला गया? तो बोले मेरे जो तंत्र है तुम उसी के साथ परास्त होए जा रहे हो। बोले नहीं, तुमने कपट किया, छल किया है, तुम सामने आमने सामने बात करो, पर्दा हटाकर शास्त्रार्थ करते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने स्वीकार कर लिया हार, अपने हार को स्वीकार कर लिया। तो ये श्लोक से मुझे वह शंकराचार्य जी के वो दृष्टांत याद आ गया, घड़े के अंदर से प्रेतात्मा बोल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि कुर्सी में बैठे हुए सारे के सारे घड़े के अंदर प्रेतात्मा ही है, ये नहीं समझ लेना, मतलब ये भी कोई घड़े से कम नहीं है। नाना छिद्र घटो, शंकराचार्य जी कह रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं, अनेक छिद्रों से युक्त हुआ हुआ घड़ा। एक घट शब्द का अर्थ क्या है पता है? घटयती इति घट, कोई इसको बना देवे तब ये बनता है, अपने आप नहीं बनता है। जैसे मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बनता है, कोई बनाने वाला हो वो बनावे, आकार और प्रकार देवे, तब वह घट बनता है। घटनात् घट, संगठन करके बनाया गया हुआ है, इसीलिए उसको घट कहते हैं। ये शरीर भी किसी के द्वारा बनाया गया है, इसमें जो मसाला प्रयोग किया गया है वह तो पंचमहाभूतों का है, पंचमहाभूतों का मसाला इसमें प्रयोग किया है। 50% मिट्टी का मसाला प्रयोग किया गया है, कितना प्रतिशत? 50%। ये मिस्त्री लोग बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो उसमें कई चीज प्रयोग करते हैं, रेत ढलान करनी हो, आरसीसी ढलान करनी हो तो उसमें कई चीज का प्रयोग होता है, रेत का प्रयोग होता है, कंक्रीट का, गिट्टी का प्रयोग होता है और साथ में सीमेंट का प्रयोग होता है, फिर पानी का प्रयोग होता है। तो उसकी फॉर्मूला है, प्लास्टर करने का जो मसाला है वह सीमेंट कितना और उस अनुपात में रेत कितना, और ढलान करनी हो तो सीमेंट कितना, रेत कितना और कंक्रीट कितना, इसका एक अनुपात हुआ हुआ है। कहते हैं हम लोग आश्रम में कहीं बनाते हैं तो ठेकेदार और मिस्त्री कहता है, महाराज प्लास्टर करने के लिए तो 1-4 का मसाला बनाना पड़ता है। तो हम नहीं समझे कि 1-4 क्या होता है, तो उसने बताया 1 बोरा सीमेंट होगा तो 4 बोरा रेत डालना पड़ेगा, 4 बोरा रेत और 1 बोरा सीमेंट का जो मसाला बनेगा उसको, उसकी फॉर्मूला है उन लोगों की, 1-4 का मसाला है। और कहीं कहीं कहते हैं कुछ ठेकेदार 1-4 के मसाले की जगह 1-6 मसाला कर देते हैं, वो मसाला बचाने के लिए ठेकेदार, ये क्या करते हैं तो सीमेंट बचाते हैं ठेकेदार, ठेकेदार बदमाशी करते हैं। तो देखना महाराज 1-4 का मसाला बनाओगे तब आश्रम बढ़िया बनेगा। तो हम कहते हैं 1-4 का मसाला बनाना ठेकेदार? हां हां महाराज 1-4 का बनाते हैं। और हम इधर उधर हो जाते हैं, आश्रम का कर्मचारी इधर उधर हो जाता है, फिर ठेकेदार जाकर लेबर को कहता है 1-6 डालना हो, 1 बोरा सीमेंट डालना और 6 बोरा रेत डालना, बोल देता है बदमाश है। ढलान के लिए भी नियम है उसके है। तो ये जो बनाया गया है आपका शरीर का फॉर्मूला क्या है, है? प्लास्टर के मसाला तो 1-4 का फॉर्मूले से बना है, तो आपका ये घर ये घड़ा कौन से फॉर्मूले से बना है? इसमें 50% तो मिट्टी है, कितना प्रतिशत ये घड़े में, कितनी प्रतिशत मिट्टी है, कौन से घड़े में, कुर्सी में बैठे हुए घड़े में, एक कमीज और कुर्ता लगाकर बैठे हुए घड़े, एक घड़े को कमीज कुर्ता लगा दिया और कुछ भी नहीं है, है? और ये दिवाली के लिए बनाया गया घड़ा था, नाना छिद्र, क्योंकि पानी भर के, पानी के प्रयोजन से तो बनाया नहीं है ये घड़ा, है? इसीलिए तो प्रयोग गलत हो रहा है ना, क्या गलत हो रहा है? दिवाली के दिया बत्ती जलाने के लिए बनाया गया यह घड़ा अनेक छिद्रों से युक्त किया गया था, और जो दिवाली के दीपक जलाने के लिए बनाया हुआ घड़ा है उस घड़े में कोई पानी भरकर लाना चाहे तो संभव होगा है? तो आप कर क्या रहे हो, यही कर रहे हो, दिवाली के लिए बनाया गया घड़े में अमृत भरना चाहते हो, ज्ञान अमृत, वो तो चू रहा है, छिद्र ही छिद्र। हम लोग क्या कर रहे हैं, दिया जलाने के लिए बनाया हुआ घड़े में अमृत भरना चाह रहे हैं, इसलिए तो अमृत टिकता नहीं है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान एक छेदा अमृत चक्षुम अमृतत्व इच्छन, परांजिघानि व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नांतरात्मा। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों का स्वभाव ऐसा बनाया, इंद्रियों को बनाकर ऐसा हिंसित कर दिया कि यह स्वाभाविक रूप में बाहर जाना ही इनका स्वभाव बन गया है। परांजिघानि व्यत्रिणत तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा पश्यति, तब ये इंद्रियां खाली बाहर तो आराम से दौड़ सकती है, बाहर के पदार्थों को तो आसान से जान सकती है। आज तक हम वही तो कर रहे हैं, बाहर के सारे पदार्थों को जान रहे हैं, दुनियादारी का इंफॉर्मेशन हम पूरे प्राप्त कर रहे हैं, न अंतरात्मा, परंतु अंदर रहने वाला जो दीपक है उसको हम नहीं जान रहे हैं। दीपक की रोशनी से जो बाहर की प्रकाश वस्तुएं हैं उनको तो हम जान रहे हैं, लेकिन वो बाहर की पदार्थ जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं वो खुद मूल प्रकाश से हम इतने अनभिज्ञ हैं कि करें क्या। तो ये दृष्टांत यहां दे रहे हैं, नाना छिद्र घटोदर स्थित मां, ये घड़ा किसी गड़वैया ने गड़ा है, ये है गुजराती में भजन सुना था गड़वैया, किसी गड़वैया ने गड़ा है, ये घड़ा गड़ा हुआ होने के कारण घड़ा, बनाए हुआ होने के कारण इसका नाम घड़ा। नाना छिद्र, आपको पता है इस घड़े में कितने छिद्र हैं? है 9, टोटल कितने थे? 11 थे। इस घड़े में टोटल 11 छिद्र थे, 2 छिद्र तो बाद में बंद हो गए, 1 छिद्र तो धाई ने बंद कर दिया, आपने बंद नहीं किया था, है ना? 1 छिद्र तो धाई ने बंद कर दिया, नर्स ने बंद कर दिया, और दूसरा छिद्र वो अपने आप ही बंद हो गया, लेकिन बाकी बचे 9 छिद्र। पूरम एकादश द्वारम अजस्त्रम पत्र चेतसा, कठोपनिषद में 12 छिद्र वाला घड़ा बताया गया है, और गीता में इसको नवद्वारवती पूरे देही, नवद्वार पूरे देही, 9 छिद्र वाला है। 9 छिद्र ये ओपन है, खुले हैं, बंद नहीं है, और उन्हीं छिद्र 9 छिद्र जो खुले हुए हैं बंद नहीं है, उसी में ज्ञानामृत भर रहे हैं, कहां से छूता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कौन कौन से छिद्र से अमृत भरते हैं, प्रेमपुरी में भर के बाहर निकलते हैं सो चू जाता है, चू जाता है, पता नहीं कहां चू जाता है, सबसे पहले तो चप्पल में चूता है, जूता चप्पल के स्टैंड में पहुंचते ही वहां चू जाता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लिफ्ट में चू जाता है कि तू पहले कि मैं पहले, है वहीं चू जाता है, और थोड़ा बचा है फिर वहां चप्पल में, फिर घर में जाओ तो फिर ऑफिस में जाओ, फिर दुकान में जाओ, पता नहीं कहां शाम तक खाली, फिर जब सुबह उठते हैं तो खाली होता है, चलो प्रेमपुरी में भरने जाओ, फिर वही घड़ा लेके आते हैं, छिद्र बंद करके आते तो भर जाता, आज तक इतना देर नहीं लगता, इतना देर ना लगता। प्रश्न करते हैं, महाराज इतने वर्षों हो गया क्यों नहीं समझ में आ रहा है, छुए जा रहा है, क्या करोगे? नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रवाह भास्वरम, एक घड़ा ऐसा है, यही शरीर, इसमें 50% मिट्टी का प्रयोग हुआ है और बाकी 50% जल तेज वायु और आकाश का प्रयोग हुआ है, और पूरा का पूरा 50% मिट्टी का प्रयोग है, इसीलिए दीपक बुझ जाने के बाद दीपक जलता रहता है, तब कुछ भी कहो इसको, देवदत्त कहो, यज्ञदत्त कहो, ब्राह्मण कहो, क्षत्रिय कहो, वैश्य कहो, स्त्री कहो, पुरुष कहो, गुरु कहो, चेला कहो, कुछ भी कह दो, जब तक दिया जल रहा है, और जब दिया बुझ जाता है तो तुरंत इसका नाम पड़ जाता है पार्थिव। इसका नाम क्या पड़ता है? पार्थिव। ये कोई पार्थिव ये बाद में नाम रख दिया है ऐसा नहीं है, पार्थिव शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी भव पार्थिव, जैसे घड़े को भी अभी आप पूछोगे ये क्या है तो बोले पार्थिव है, किसका है तो बोले मिट्टी का है। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है। ये खिलौना खुद मिट्टी का है, नियति यह है कि वह खुद मिट्टी का है, और इसकी समस्या यह है कि टूटने से यह हमेशा डरता है। अरे भाई, मिट्टी का खिलौना और टूटने से डरकर कब तक डरता रहेगा, कब तक बचता रहेगा? कभी न कभी तो मिट्टी का खिलौना टूटे ही जाएगा। खिलौना ही मिट्टी का है, वो फना होने से डर के करेगा क्या? फना तो होना ही है उसको, नियति है उसकी। इसीलिए किसी ने कहा है ना, मिट्टी का खिलौना फना होने से डरता है, बड़ा होना चाहता है, बड़ों की बात सुनकर बड़ा होने से डरता है। किसी ने कहा है, बड़ों की बात सुनता है बड़े प्रेम से, बड़ा होना चाहता है लेकिन बड़े होने से डरता है। कहीं बड़ा होने चला गया तो कहीं चौपट न हो जाए, इधर न छूट जाए। ज्ञानी होना चाहता है, ज्ञानी की बात सुनता है तो ज्ञानी होना चाहता है लेकिन डरता यह है कि कहीं ज्ञानी हो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया सुखदेव की तरह, और साड़ी और पैंट सब उतर गए तो क्या होगा मेरा? सुखदेव के तो पॉइंट शॉट थे नहीं भाई, दिगंबर थे। फिर बड़ों की बात सुनकर बड़ा होने से डरता है। जड़ भरत हो गया तो बोले अरे मैं जड़ हो गया तो फिर बचाता है अपने अध्यास को और रक्षा करने लग जाता है अध्यास की। यही चाहता है कि जगत की प्रतीति होते हुए, सारे व्यवहार होते हुए मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। अरे बाबा, पहले हिम्मत करो, मारो लात, तोड़ो अध्यास, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बोध होने के बाद फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोध होने से पहले हिम्मत करना पड़ेगा। सभी ने हिम्मत किया है, सभी ने हिम्मत किया है, जिनको भी बोध हुआ महापुरुषों को, उन्होंने हिम्मत किया है। इस अध्यास को पहले लात मारा है तभी जाकर वह वो उनको बोध की प्राप्ति हुई है, और उसके बाद फिर तो सहज हो जाता है। तो ये मिट्टी का खिलौना है। नाना छिद्र घटो दर स्थित महा दीप प्रभाभास्वरम। परमात्मा ने ये घड़े को, पंचभूतात्मक घड़े को, 9 छिद्र 12 11 छिद्र वाले इस घड़े को बनाकर और इसके अंदर वह स्वयं दीपक के रूप में, जलता हुआ दीपक के रूप में स्वयं बैठ गया, यानी जल रहा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ज्योति जैसा है, बत्ती की तरह है, घी के ज्योति जैसा, उसका ध्यान करो। अरे आत्मा कैसा है? ये तो अलग अलग है। ज्योति जैसा है, आत्मा ज्ञान जैसा है, आत्मा चैतन्य है। जिस किसी का भी ध्यान कर लो, कहां करोगे? नाना छिद्र घट उदर स्थित, या उदर उपलक्षण है, घड़े के अंदर यानी घटाकाश में, अंदर घड़े के अंदर, जैसे हम लोग एक दिया जलाते हैं वो दिया जलता रहता है, दिया दिखता नहीं, दिए की रोशनी उस छिद्र से बाहर आती है, दिया नहीं दिखता है। यदि घड़े के अंदर न रखो तो दिया स्पष्ट दिखेगा, घड़े के अंदर रखते हैं तो दिया दिखता नहीं लेकिन रोशनी बाहर आता है। अभी भी यही हो रहा है, इस घड़े के अंदर वह आत्म ज्योति जल रही है लेकिन वो दिया खुद नहीं दिख रहा है, आत्म ज्योति नहीं दिख रही है, उसकी रोशनी इन इंद्रिय रूपी छिद्रों से बाहर निकली जा रही है और वो प्रकाश रोशनी पदार्थों को प्रकाशित कर रही है। इस श्लोक को और पूरा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।